ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का अध्याय 13वां और 7वां स्कंद अध्याय 13वां और शीर्षक है पूर्ण पुरुष का आचरण जो हम लोग सन्यासियों को लागू होता है। भैया सोचो, ऑलराइट, कैंडिडेट है हमारा। और श्लोक संख्या है 18। ओके, संन्यास की चार अवस्था बताई है ना। सर्वप्रथम कुटीचक कहलाता है, दूसरा बाहुदक कहलाता है, तीसरा परिव्रजक आचार्य और चौथा है परमहंस। इसमें श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन में तो सीधे ही परिव्रजक आचार्य का दर्जा सबको दे दिया, यानी कि संन्यास का स्टैंडर्ड। सारी दुनिया गोमो प्रचार करो और कुछ है ही नहीं। लेकिन सिर्फ भगवान की शक्ति पर ही आधार रखकर सन्यासी को अपना निभाव से लेकर प्रचार तक सब पूर्ण आश्रित रहकर करना है। और भगवान की भक्ति में अनुकूल हो वो स्वीकार करना, प्रतिकूल हो वर्जित करना होता है। ये शरणागति के भी तो नियम है। तो इसी तरह भगवान पर पूर्ण आश्रित होकर भगवान को अनुकूल क्या है वही एकमात्र उसकी नजर सारे अपने जीवंत पर्यंत के कर्तव्यों पर निर्भर रहती है। और यहां लिखा है पूर्ण पुरुष कि यह संन्यास की अवस्था परिव्रजकाचार्य के बाद परमहंस की जब आती है तो परमहंस पूर्ण पुरुष होता है। तो उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, वो समाज में कैसे आचरण करता है। तो श्रील प्रह्लाद महाराज के शासन दरमियान इनको ही एक ऐसे पुरुष की भेंट होती है जो अजागर वृत्ति से अपना निर्वाह कर रहा है। जो आया स्वीकार किया, नहीं मिला तो कुछ रंजित नहीं, न हर्षति न शोकति। तो इस प्रसंग के आगे में प्रह्लाद महाराज को यही विस्मय होता है कि एक जगह पर अजागृत वृत्ति रखने वाला पुरुष इतना पट्ठा कैसे हो सकता है। पट्ठा होना यानी कि इंद्रिय तृप्ति करता होगा, वही पट्ठा बन सकते हैं हमारे जैसा के अंदर इंद्रिय तृप्ति करने वाला पट्ठा होता है। पर लेकिन ये तो परमहंस की स्थिति पर है, अजाब यानी कि जो मिला वो खाया, नहीं मिला तो कुछ हर्जा नहीं। फिर भी इतना मोटा क्यों हो गया? ये भौतिक प्रकृति विरोधाभासी है। आंतरिक अवस्था क्या है और बहिरंग अवस्था क्या है, दोनों में भेद है ना। आदर्श पुरुष तो अपने शरीर को भी समतोल रखता है, पर लेकिन यहां तो उल्टा है। तो परम पुरुष की आंतरिक अवस्था पर प्रहलाद महाराज उनसे पूछा करते हैं कि भैया आप एक जगह पे बैठे हैं, इतने पट्टे कैसे हो गए हैं? आपके आचरण और आपका जो वक्तव्य है वो तो एक आदर्श पुरुष की प्रतिभा बताता है, लेकिन विस्मय ये है कि आप इतने मोटे क्यों हो गए? मोटापा धारण। तो पहले प्रश्न में कल क्या बताया था? हे महोदय, आप अपनी जीविका का अर्जित करने के हेतु कोई उद्यम तो नहीं करते हैं, तो भी आपका शरीर उसी प्रकार हृष्ट पुष्ट है जैसा कि भौतिकवादी कर्मी भोगी का होता है। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई अत्यंत धनी हो और उसके पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं हो, तो ये खाखा कर सोते हुए और कोई काम न करके अत्यधिक मोटा हो जाता है। वो प्रहलाद महाराज अपनी समझ के अनुसार उसको उसकी आंतरिक स्थिति जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आज का श्लोक में वो आगे बोलते हैं, न ते शयानस्य निरुद्धमस्य ब्रह्मन् नु अर्थो यत एव भोगः अभोगिनो अयम् तव विप्र देहः पिवा यतस् तद्वत् न क्षमं चेत। न नहीं, ते आपका शयनस्य लेटे हुए, निरुद्धमस्य बिना काम काज के, ब्रह्मन् हे साधु पुरुष, नु निसंदेह ह स्पष्ट है अर्थ धन यत जिससे एव निसंदेह भोग इंद्रिय भोग अभोगिनः इंद्रिय भोग में न लगे हुए का, अयम यह तव आपका विप्र हे विद्वान ब्राह्मण, देह शरीर पीवा स्थूल यत जिस प्रकार, तत व तथ्य वद कृपा करके कहो, न हमको क्षमम क्षमा करो चेत यदि मैंने दृष्टता की हो। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे अध्यात्मी अध्यात्म ज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ नहीं करना होता है जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी समझा जा सकता है कि इंद्रिय भोग हेतु आपके पास धन नहीं है, तो फिर आपका शरीर इतना स्थूल मोटा कैसे हो गया है? ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न को दृष्टता नहीं मानते, तो कृपा करके बतलाए कि हम किस प्रकार से हुआ है। सामान्यतया आध्यात्मिक उन्नति में लगे लोग एक बार भोजन करते हैं, चाहे दोपहर को या संध्या के समय। यदि कोई केवल एक बार भोजन करे तो स्वाभाविक है कि वह स्थूल नहीं हो जाता, किंतु यह विद्वान साधु अधिक स्थूल था। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित थे। आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने से अध्यात्मवादी के मुखमंडल पर निश्चय ही तेज आ जाता है। जो आत्म साक्षात्कार में उन्नत हो उसका शरीर ब्राह्मण का शरीर माना जाता है, क्योंकि तेजवान साधु पुरुष काम नहीं करता था और भूमि पर लेटा था, फिर भी वह स्थूल था। इसलिए भक्त प्रहलाद महाराज चकित थे और उसके विषय में पूछने चाह रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया च चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरुः श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन् हुहार्थो यत एव भोगः अभोगिनोऽयं तव विप्रदेह पित्वा यदस्तदत् न क्षम चेत। फिर से अनुवाद देखें। ये अध्यात्म ज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ नहीं करना होता है जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी समझा जा सकता है कि इंद्रिय भोग हेतु आपके पास धन नहीं है, तो फिर आपका शरीर इतना स्थूल मोटा कैसे हो गया है? ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न को दृष्टता नहीं मानते तो कृपा करके बतलाइए कि इस प्रकार या किस प्रकार इस हुआ है। जब विरोधाभासी लक्षण होते हैं किसी भी अवस्था में, तो उसके पीछे लोग बाह्य कारण ढूंढते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाओ, शरीर के बारे में जानता है वो कहता है अरे मोटापा हो गया है तुम्हें, जरा डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, वो करो। लेकिन ये मोटापा का कारण खाने की वजह से ही हुआ है ज्यादातर हो सकता है। ज्यादातर हो सकता है क्योंकि कोई विवेकहीनता से जो आया खा लेता है तो जाएगा कहाँ। तो शरीर में जितनी वो मेद की कोशिकाएं हैं उसका नंबर देखे तो बचपन में भी इतनी होती है जो मोटापे में भी होती है, सिर्फ वो खाली होती है या भरी होती है इतना ही भेद है। जब हम भर चुके होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इसको निकाला तो नहीं जा सकता, इसलिए वो जानते हैं कि एक्सरसाइज भी फेल होगी, एक्सरसाइज से मोटापा उतरता नहीं या डाइटिंग करने से भी मोटापा उतरता नहीं। जैसे मौका मिल गया शरीर तो मांगेगा ही मांगेगा, अपनी मूल स्थिति पर आने के लिए प्रयत्न करेगा। लाख बार जो बहिरंग प्रयास जो हैं वो हमेशा फेल होते हैं, बाहर से हम जो कोई उपचार करते हैं वो सभी बेकार होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भगवान जब कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्टि यानी कि ये प्रहलाद महाराज की परम दृष्टि से वो तय करना चाहते हैं कि सब विरोधाभासी चीज उसमें दिखाई देती है कि इतना पट्टा है इसलिए निष्क्रिय बनना रहता है और इसीलिए लेटा होता है, नहीं तो खड़ा होता है या को उद्यम करता होगा। ज्ञान से शरीर का कोई निस्बत नहीं है, ज्ञान से शरीर का कोई निस्बत नहीं है, यह अध्यात्म ज्ञानी है लेकिन इसकी वृत्ति जिस तरफ उसने अजागर वृत्ति अपनाई है। प्रभुपाद जी अजागर वृत्ति को कहते हैं कि अजागर बड़ा सांप होता है, अपने निर्वाह के लिए और रहवास के लिए वो चूहों के दर में जाता है। अपने भरतपुर में है ना वो अगापुर जहाँ पाइथन पॉइंट कहते हैं, वहां देखना सब हे पड़े रहते हैं गर्मी में, जो आया उसे हड़प कर लेते हैं, नहीं तो जाएगा कहाँ के वो चूहों के दर में जाता है। बिल में जाकर वो चूहे को खाता है और आराम से रहता है। ये वृत्ति अजागर वृत्ति है और अजागर वृत्ति सन्यासियों की होनी चाहिए, अजागर वृत्ति सन्यासी की होनी चाहिए। जो आया मिले इतना खा लेना, मित भूख होना चाहिए। लेकिन यदि कोई हमारे जैसे जाते हैं तो सब जगह दबा के खिलाते हैं, जाएंगे कहाँ। हमें तो दूसरों की प्रसन्नता के लिए भी जबरदस्ती से जैसे खाना पड़ता है। म्यांमार में ऐसा ही होता है ना, थाईलैंड में भी ऐसा होता है ना, तो फिर जहां जाओ वहां महाराज जी क्या खाओगे पहला प्रश्न आता है। हम कहूं कि तेरा कलेजा खाऊंगा है। कहने का मतलब है कि इसके अलावा गृहस्थियों के घर का पावन करने का कोई दूसरा मार्ग भी नहीं मिलता। ये कलयुग है भाई, तो समय वर्ते सावधान। तो हुआ क्या, प्रहलाद महाराज अजागर वृत्ति की प्रशंसा भी कर रहे हैं, प्रभुपाद जी भी अजागर वृत्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये वृत्ति सन्यासियों के लिए होनी चाहिए। सन्यासियों को मित भूख मित भाष दोनों आवश्यक है, उसकी भूख मर्यादित होनी चाहिए। कहते हैं ना कि यदि भूख लगी है पूरे तो भरपेट मत खाओ, आधा छोड़ो, आधा हवा के लिए रखो, तो बाद में पानी से भर देना। ज्यादा खाओगे तो बिना सन्यासी ही मोटे हो जाओगे तो क्या फायदा है, यही परिस्थिति सबकी है। और मंदिरों में तो तगड़ा बनता है, बहाने बहाने फिस्ट का आयोजन होता ही रहता है। श्राद्ध है तो क्योंकि हैप्पी बर्थडे है, तीसरा कोई बहाना निकालता है, कोई और बहाना निकालता है। कहने का मतलब है ये जो वृत्ति है वो अजागर वृत्ति है, एक साधुओं में अजागर वृत्ति होनी चाहिए। प्रभुपाद जी सराहना करते हैं लेकिन उसे अपने शरीर का नियंत्रण खुद करना होता है। ये यम और नियम के सिद्धांत में आता है। यम में मनोनिग्रह होता है, समम दमः दमह में इंद्रिय निग्रह जबरदस्ती से करना होता है, दम मार के इंद्रियों को भड़काना होता है। दूसरी चीज बाद में सफलता प्राप्त करेगी। तो यहां तो ये साधु जो जवाब देगा वो पद्धति सर का जवाब है। ये पृच्छा कोई अजुगति नहीं है। आप मेरे प्रश्न को दृष्ट नहीं माने, मैं उद्धत बल के आपको ये सवाल नहीं कर सकता। तो लेकिन फिर भी हमें रहस्य तो जानना होता है कि किस प्रकार हुआ। और अवधूत का जो जवाब है, उत्तर है, वो भी बहुत रोचक है। ये हालत कैसे हुई? तो वो हालत पर वो नियंत्रण नहीं रखा, एक स्पष्ट बात हो जाती है। लेकिन आंतरिक कारण क्या है वो देखना है। जो जानबूझकर खा के पट्ठा हो जाता है और अनायास वो अपने स्वधर्म में रहकर यदि पट्ठा हो जाता है, तो दोनों में अंतर होता है, क्योंकि आंतरिक स्थिति का ही भेद होता है। वो रहस्य अवधूत जवाब देगा, तब प्रहलाद महाराज उसकी सराहना करेंगे। लेकिन ये जो प्रश्नोत्तरी होती है तो सबके लिए बहुत आवकारप्रद है, क्योंकि कई चीजें अपने नियंत्रण में नहीं है। कोई हठ योगी हो तो ये बाहरी चीज को हठ से रुकने का प्रयत्न करता है, लेकिन अंतरात्मा में तो वो विषय लोलुप थोड़ा मिट जाता है। वो तो मौका मिले ही फायदा। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि इंद्रियों को भूखा रखने के लिए इंद्रियों अपना स्वाद नहीं छोड़ती। वो तो पांव के नीचे यदि सांप को दबा के बैठे हैं, लेकिन जैसे पांव उठाया वो दसेगा ही दसेगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसोवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वहां भगवान सूचना कर देते हैं। क्या सूचना है? यदि आप निराहारी बनकर इंद्रिय पेट पर कंट्रोल करना चाहते हो तो लेकिन वो कब तक? मौका मिलते ही वो मांगेगा और खा लोगे आप, इसलिए जैसे कि वैसे ही परिस्थिति बनी रहती है। लेकिन यदि आप रसोवर्जम या हल्के रस को छोड़ना है तो पर रस उसे ऊपर से ज्यादा बेहतर रस अपनाओ। रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब भगवान की ओर जिसका चित्त है तो परम रस के आस्वाद के लिए हमेशा वो चाहना करता है। भौतिक रस उन निर्वाह के लिए है या भूखे रहने के लिए है, ये दोनों बराबर है। द्वैते भद्र अभद्र सकली समान, यही भालो यही मंद सब मनोधर्म। आज डायबिटीज वालों को यही परेशानी हो रही। कोई कहते खाओ यार, मरना तो एक ही बार है ना, खा के मरो नहीं तो भूख से मरो, दोनों में से क्या पसंद है? लेकिन रसो वर्जम रसो अप्यस्य, एक हल्के रस को छोड़ने के लिए नया रस की ही तो आवश्यकता है और उत्तम रस की आवश्यकता है। वो अपनाओ। तो हम लोग क्या करते हैं? उत्तम रस हरे कृष्ण महामंत्र का है और हल्के रस जो पदार्थ में होता है वो भी दबा के खाओ और हरि नाम भी दबा के करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि सबको मित भूख रहना है तो प्रभुपाद जी यूं क्यों कहे थे, दबा के खाओ। सम्चुअस फूड, सम्चुअस यानी कि आपके पेट भी फूल के फट जाए इतना खाओ। खाया है तूने, पतला दुबला क्यों रह रहा है, दबा के खाना। लेकिन प्रसाद खाना, प्रसाद में परम रस होता है, वो अध्यात्म का रस होता है। अध्यात्म में भक्ति की सेवा आती है, तो सेवा द्वारा भक्तों ने जो कुछ बनाया है और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए बनाया है वो हमें ग्रहण करना होता है, तो परम रस की प्राप्ति होती है। ऐसे खाने में ठीक भी होगा नहीं ठीक भी होगा, तो बहुत सारी एक्सट्रीम की बातें आती हैं, दोनों में इतना अंतर हो जाता है। हमारी एक लड़की खाना तो बहुत चाहती है लेकिन पेट में हजम नहीं कर पाती तो वोमिट करके निकाल देती है, और वो भी कहती है कि अरे भाई मैं क्या करूं, और 35 किलोग्राम की हो गई, जीना भी मुश्किल होता है। बाद में क्या हुआ, 6-7 साल बाद वो भी परेशान हो गई, दबा के खाने लगी, अभी इतनी मोटी हो गई क्या ज्यादा नहीं खाएगी। तो ये सब मानसिक विकार भी होते हैं, उसके द्वारा हम अपने खाने पीने का संचालन नहीं कर पाते। कहीं एकदम दूसरे एक छेड़े पर ही चले जाएं, जब परम रस कृष्ण भावना में परम रस की जब प्राप्ति होती है तो पतला क्या मोटा क्या उसकी कोई भेद वृत्ति नहीं रखते। कृष्ण भावना परम रस है। तो प्रहलाद महाराज ये जानना चाहते हैं कि ये अवधुत कि कृष्ण भावना कितनी तीव्र है, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं, कोई मजाक के लिए प्रश्न नहीं होता है। नहीं तो मजाक यदि किसी को करना है तो प्रभुपाद जी ही सिखाते हैं। एक दिन सैन फ्रांसिस्को में वो मॉर्निंग वॉक गोल्डन गेट पार्क में भक्तों के साथ जा रहे थे, तो वहां जॉगिंग करने के लिए बहुत सारे आते हैं, तो एक पट्ठा आदमी भी जॉगिंग करने के लिए प्रभुपाद जी के बगल में से निकला। तो प्रभुपाद जी से देख रहे हैं, एक भक्त को पूछा, जा उसको पूछो ये माल कहां से लाया। ये माल कहां से लाया, वो बेचारा कुछ समझा नहीं। प्रभुपाद ने दूसरी बार कहा, जा जा या पूछ, वो तो चला जाएगा, पूछ उसके माल कहां से खरीदा तूने। तो दोबारा और प्रभुपाद जी ने पूछा, तब भक्तों की अक्ल में आके कि ये रहस्य जानना चाहते कि ये सब जो माल है कहां से लाया, शरीर में भर के जो जा रहा है वो सारा माल है ना, वो कहां से लाया। तब भक्तों को समझ में आया कि प्रभुपाद जी का मंतव्य ये है, तो समझ में आ गया के पराया माल है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर् भक्ति विनश्यति। तो जिसको प्रसाद नहीं मिलता है और अपना पकाया हुआ खाते हैं तो उनको चिंता का विषय होता है। प्रसाद में स्वाभाविक रूप से प्रसाद का आदर भी करना चाहिए, अनादर भी नहीं करना चाहिए, और भगवान की कृपा समझकर जब खाते हैं तो परम रस अवश्य प्राप्त होता है। हाँ, तो ये जो नीति नियम है, हाँ, मिताहारी, मित भूख, ये साधु के लक्षण होते हैं, पर ये लक्षण सामान्य होने चाहिए, लेकिन अवधूत में तो वो खुद ही असामान्य है, तो उसका कोई कारण होना चाहिए। So, इसी तरह ये वार्तालाप हो रहा है, लेकिन उसमें परम रस ये अवधूत का क्या है और किस की वजह से पैदा हुआ है, क्यों समझ, क्या कौन सी ऐसी समझदारी आई है कि ये अवधूत ने अपना रहस्य बताया। अवधूत तो पतला हो या मोटा हो, उसे पतले मोटे से निस्बत नहीं होती। हाँ, वो अपनी मस्ती में कहाँ है, वो देखता है, और अपनी मस्ती भगवान कृष्ण की सेवा में यदि मानसिक रूप से उसने बनाई रखी है, ऐसी स्थिति भी जानने की आवश्यकता होती है, और एक अकलमंदी की बात वो कर देता है। ये सामान्य मनुष्य के बीच में प्रश्न नहीं होता है। जब कोई अवधूत और प्रह्लाद महाराज दोनों ब्रह्मनिष्ठ हैं, दोनों ने साक्षात्कार किए हैं, इसलिए ये रहस्य का उद्घाटन सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। वो जो कहेगा वो अपने को अचंभे में डाल देगा। वो कहता है, प्रह्लाद महाराज, मैं आपके बारे में जानता हूं, आप नित्य मुक्त भक्त हो, और मैं भी नित्य मुक्त हो गया हूं, सारी धारणा हमने भगवान के प्रति रखी है, और भौतिक धारणा को हमने पहले से ही तिलांजलि दी है, इसलिए हम भौतिकता से छोटे मोटे का भी कोई विचार नहीं, लेकिन ये समान कक्षा की जो स्थिति जो है, समान कक्षा है, क्योंकि दोनों आत्म अनुभूति करने वाले हैं, वो दोनों बीच में जो वार्तालाप होता है वो सही वही स्तर पे होगा। इसलिए वो कह देता है कि प्रह्लाद महाराज, मैं आपकी स्थिति जानता हूं, इसलिए मैं आपको रहस्य प्रकट करने का प्रयास करूंगा, नहीं तो कौन समझेगा। तो ये सिद्धांत रखना, हम कौन सी स्थिति पे पहुंचे हैं, किन पर हम आलोचना कर रहे हैं मोटापे की किया, तो देखना जरा कि हमारी क्या औकात है पहले। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, आत्मा की स्थिति का विषय है। जो समांतर स्थिति में होता है वही रहस्य पा सकता है। अलग अलग रीतियां हैं, विरक्त भावना जो होती है वो आंतरिक होती है, बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा, और भक्ति में विरक्ति और अहेतु के ज्ञान दोनों तो पैदावार होती है। हाँ, भक्ति की पैदाश है, वो अवश्य आनी चाहिए। तो इस तरह ये संवाद का जो मूल हेतु है, वो ये कोई मजाक का विषय नहीं, इसलिए स्पष्टता करने के लिए प्रह्लाद महाराज ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न को दुष्टता नहीं मानते तो कृपा करके बतलाइए कि इस प्रकार किस प्रकार से हुआ। दो चीज है, जानबूझकर हम अपने शरीर का निग्लेक्ट कर देते हैं, जो मिला जो खाया, नहीं मिला तो राम राम। हम शरीर के निभाव के लिए प्रयत्न नहीं करते। तो ये अवधूत की भी ऐसी दशा हो गई है। वो कहेगा, कोई यदि आता है मुझे बुलाता है हाथी पर ले जाता है, नहीं तो यहीं लेट रहना पड़ता है। हाँ, ये असमतुलना वैसे भी तो विरक्ति में आती ही है ना। सब कुछ होते हुए भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, भगवान और भक्तों की इंद्रिय तृप्ति के लिए हम उपयोग करते हैं हमारे पास जो कुछ है, तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है। हाँ? तो इन चीजों पर हमें खास करके जो भक्ति का मूलक है वो हमें ये सिखाता है, तो जो सीखना है वो सीखना चाहिए, नहीं तो हंसी मजाक तो होती ही रहती है। लेकिन आज किसी की कि आपको संतोष नहीं तो कल दूसरों की करोगे, लेकिन तीसरा कोई आपकी भी करेगा, फायदा क्या है? तो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए जो लोग हैं इनको तो एक बार ही भोजन करना होता है, दोबारा भोजन नहीं करते हैं। यदि कोई एक बार भोजन करे तो स्वाभाविक है कि वह स्थूल नहीं हो जाता। कौन कितनी बार खाता है तो आप ही हिसाब लगाना चालू कर दो। तपश्चर्या एक बार खाने से काफी हासिल हो जाती है, नहीं खाने से तो एक बार खाना आवश्यक है। जब कोई विद्वान होता है और ऐसी विरोधाभासी परिस्थिति में फंसता है तो वो भौतिकता में फंसा नहीं कहलाता है, वो अपने शरीर का खुद उसने तिरस्कार किया है। मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मैं शरीर से अपना बर्ताव पूर्ण रूप से निष्क्रिय बनाकर, तो अजागर वृत्ति हो गई। खाने के लिए मेहनत नहीं की, जो आया हड़प कर लिया। यह अजागर वृत्ति जो है वो शेरों की वृत्ति से भी अलग है। आप चाणक्य पंडित का वो जो सुभाषित है ना, उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती सर्व कार्य मनोरथाणी नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुग्रा। उद्यम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सिद्ध्यंति उसे सिद्धि मिलती है, कुछ परिणाम मिलता है। तो काम करने की जबरदस्ती पड़ती है और हमारे जो मनोरथ हैं वो भी अपने कार्यों से ही तो फलीभूत होते हैं, उद्यम से ही। तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, यदि शेर सोता रहे तो अपने आप उसके मुख में कोई मृग आकर नहीं कहेगा मुझे खा ले, मैं आया हूं, उसे मेहनत करनी पड़ती है ना। एक इतने सबसे ताकतवर जानवर को भी मेहनत करनी पड़ती है, तो मनुष्य का क्या हिसाब है? लेकिन ये सिंह सिर्फ पेट भरने के लिए ही जीता है, ऐसे ही मनुष्य पेट भरने के लिए जीता रहा है, तो दोनों में अंतर नहीं होगा। जो उद्यम जिस दिशा में करना चाहिए वो उद्यम मनुष्य नहीं करता है तो वो कैसे भवबंधन से छूट पाएगा? ये तो भवबंधन छूटे हुए फिर भी शरीर के लक्षण ऐसे हैं जो किसी को विस्मय में डाल देते हैं। तो मैं यहां रुकता हूं, किसी को कोई प्रश्न है? माइक। जोर से बोलो। सही है, सबके कल्याण के लिए है, सिर्फ एक के लाभ के लिए प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इनकी इच्छा है लेकिन लोग गैर समझ ना करें इसीलिए स्पष्टता कर देते हैं, ये समझाने के लिए, नहीं तो क्या प्रहलाद महाराज उसकी पहचान कैसे पा गए हैं। लेकिन जब इसमें भी विषमता देखते हैं, बाहरी विषमता है, आंतरिक विषमता के लिए कोई प्रश्न नहीं है। और ये कोई प्रहलाद महाराज का स्वभाव दुष्ट हो गया इसीलिए प्रश्न पूछते हैं, किसी के पर मजाक करने के लिए है ये? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। और कोई प्रश्न है? नहीं समझ में आता है माता जी, जोर से बोलो या हमें कंट्रोल करना चाहिए।
पर कैसे करें? जैसे आपने बताया कि हमें कंट्रोल करना चाहिए, पर कंट्रोल हम उसको पूरी तरह से कैसे करें?
तो तेरे पापा नहीं कहते कुछ कंट्रोल करने के लिए? पापा और मम्मी की जिम्मेदारी है, हैं? कितनी रोटी खाता है?
दो।
दो? ज्यादा खा लिया तो देखना पट्टा हो जाएगा। क्या प्रश्न है माता जी इसमें बोलो।
मुझे रामानंद राय के बारे में कुछ सुनना चाहता।
क्या?
रामानंद राय के बारे में कुछ।
आज रामानंद राय की पुण्यतिथि है, डिसअपीयरेंस डे। हम तो रोज पढ़ते हैं रामानंद राय के। चैतन्य महाप्रभु तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने विनती की, आप जब दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं तो आप अवश्य रामानंद राय को मिलना, जो आपका पथ पे चलने वाला है। हाँ, और प्रताप रुद्र का भरोसामंद सेवक है, वो शूद्र परिवार में है फिर भी एक विशुद्ध भक्त है। वो सार्वभौम भट्टाचार्य जब भक्त बनाने तब उनको इसको अवश्य मिलना। चैतन्य महाप्रभु तो जानते ही थे, वैसे तो गोदावरी में स्नान करने गए तब रामानंद भी पालकी में आ रहा है, और उसके पीछे सारे ब्राह्मण लोग स्तुति करके आ रहे हैं। एक शूद्र को पालकी में बिठाना और ब्राह्मण स्तुति करना, ऐसी विचित्रता वहां थी। लेकिन रामानंद वो राजद्वारी थे तो उसका प्रोटोकॉल जो होता है, उसका जो नीति नियम का पालन है वो भी करते थे, लेकिन इनके आंतरिक स्थिति ऐसी बना के बैठे हैं भगवान की विशुद्ध भक्ति में, और वो भी प्रेम लक्षण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको पूछा तो सब जानता है, चल बता प्रेम लक्षण भक्ति क्या है, वो इसके स्तर क्या है, कौन सी श्रेष्ठ है। तो उसने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में ही श्रेष्ठता बताइए। उसने शास्त्र में बताया हुआ है, कहा कि देखो अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्व अनुतिष्ठस्य स्वधर्म से अनुतिष्ठस्य संसिद्धि हरितोषण। अपने अपने स्वधर्म में जो नियुक्त किए गए शास्त्र में जो कर्तव्य है उसका पालन करके हम गृहस्थाश्रम निवास, वो वही भक्ति से यानी कि ये सारे कर्म भगवान की प्रियता प्राप्त करने के लिए तो वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु वो तो ठीक है शास्त्र में कहा है, लेकिन उसके आगे तो बोल कुछ। तब उन्होंने आगे बढ़ाया सर्व कर्म फल त्यागम, भगवान की प्रीति के लिए भक्ति में, और वो भी शांत भाव में। तो जो शांत भाव में भक्ति करता है वो सर्वोत्तम है। चैतन्य महाप्रभु हाँ हाँ ठीक है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन उसके आगे बोल। तब उन्होंने साख्य भाव दास्य भाव पर ज्यादा चर्चा की और चैतन्य महाप्रभु उसको ज्यादा उत्तेजन देकर ना तो कह तो रहा ठीक लेकिन उसके आगे जरा बोलो ने। तो ये सारे क्रमानुसार जो भक्तों के निजी संबंध भगवान के साथ उसमें जो प्रेम और जो आपले होती है इनकी तीव्रता की मात्रा हर संबंध में बढ़ती जा रही है। तो शांत भाव से दास्य भाव से साख्य भाव से वात्सल्य भाव और वात्सल्य भाव से माधुर्य भाव में सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु से उसको चाबी चढ़ाते हैं तो बराबर तो बोल ही रहा है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके आगे बोल जिससे पूर्ण संतोष होता है। तब उन्होंने गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में बताया जो वात्सल्य भाव से भी ऊपर है। और रामानंद राय शास्त्रों का यथोचित उदाहरण देते थे कि देखो भागवत में ये कहा है, भागवत में ये कहा है। सर्व प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी धीरे धीरे हमें भक्ति की अतिशुद्ध जो पराकाष्ठा है प्रेम की उस पर ले जाते हैं। तो ये अभ्यास व्यवस्थित रूप से करना होता है। तो ये रामानंद संलाप है। रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया मैं वापस जाता हूं, तो पहले मेरे पहले जगन्नाथपुरी पहुंच जाना। तो सब छोड़ छाड़ कर चले गए। भक्त को भगवान की पहचान करने में मुश्किल ही नहीं आई, आती ही नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। विशुद्ध भक्ति ऐसी प्रकार की होती है। वो कह रहे हैं आप मुझे पूछा करके दुनिया को बताना चाहते हैं, लेकिन आप तो मेरे ही सर्वेश्वर हो, आपके शरणार्थ में बनाओ। इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपको मेरा उद्धार करने के लिए भेजा है। देखो तो ऐसी जो निष्पक्ष और किसी की प्रकार का अंकुश ना रहे ऐसी विशुद्ध भक्ति निरंकुश भक्ति कहलाती है। वो सदा बहती रहती है, उस पर कोई अंकुश नहीं डाल सकता। वो प्रेम लक्षणा भक्ति की पूरी पूरी पहचान रामानंद राय को थी। तो रामानंद राय का स्वरूप क्या बताया है, विशाखा देवी, विशाखा देवी। तो गौर गुणोद्देश दीपिका में इसी तरह जो समांतर चरित्र होता है भक्तों का, तो भगवान के ये अंतेवासी कहलाने वाले सारी गोपियां इनके परिकर हैं। तो ये सिद्ध करते हैं कि चैतन्य रा संगी संगे नित्य सिद्ध करी माने जे जाए ब्रजेंद्र पुरुषोत्तम पास। ये रास्ते से हमें भटकना नहीं है, इसीलिए चैतन्य चरितामृत का अभ्यास बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसे नहीं चढ़ जाना। पहले भगवत गीता, भगवान का परिचय और भगवान की अनुभूति शिष्य गुरु द्वारा प्राप्त करता है, और भगवान के दिव्यता के चरित्रों का अभ्यास करके भगवान को नक्षिक जानता है, उसका साथ का जो प्रेम संबंध है भक्त भक्त में तो वो प्रदर्शित करता है, वो उसकी परिपक्वता आती है, तब मुक्ति होती है, तब भगवान के साथ निजी संबंध में आध्यात्मिक परंपरा जो होती है वो भगवान के निजी परिकरों द्वारा होती है, तब इनके संबंध में जो हरिनाम चिंतामणि में भजन क्रिया बताई है, भजन लालसा भक्ति विनोद ठाकुर ने भी लिखकर बहुत सारी स्पष्टता की है। तो ये कोई चिप मामला नहीं है, सब अपनी अपनी मर्यादा में भगवान के साथ जो जो संबंध है उसका कुदरती ही विकास करना चाहिए, कृत्रिम स्वरूप नहीं देना। तो सब अपना अपना स्वरूप आंतरिक स्वरूप जो होता है उसे गुरु की मदद से प्राप्त करते हैं। बाद में गुरु ये जो आमनाय सूत्र जो है, यानी कि जो आंतरिक प्रक्रिया है जो भजन क्रिया कहलाती है, निर्जन भजन, ये सब अंतरात्मा से बाहर दिखाने के लिए नहीं होता है। तो ये रामानंद राय उसके लिए काफी सतेज रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इनको ही प्रेम रस का अधिकारी आचार्य बनाया है। और अंतिम समय में भी स्वरूप दामोदर रामानंद राय इस दोनों साथ में रहे हैं, जिनकी जो स्पॉन्टेनियस यानी रागानुग अवस्थाएं जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में बताते हैं, उसका भी स्पष्टीकरण रामानंद राय और स्वरूप दामोदर देते हैं। रामानंद राय कहते हैं, स्वरूप दामोदर अपनी डायरी में लिख देते हैं। तो ये दोनों भगवान के निजी स्वरूप में बहुत अंतरंग भक्त थे। रामानंद राय की